नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मधुर नाम में आपको नमस्कार। मैं फिर से इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, मुझे आशा है कि आप इस अध्ययन से कुछ नई बातों को सीख रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने पृथ्वी व मनुष्य के सृष्टि के बारे में कई सिद्धांतों को देखा था। आज हम उसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर हेरिबर्ट नेल्सन के वक्तव्य पर ध्यान देंगे। वह भी जो क्रम विकास सिद्धांत को मानने वाला था, उसने कहा, मेरी कोशिश थी कि क्रम विकास सिद्धांत को सिद्ध करूं और इसके लिए 40 वर्षों से भी अधिक समय तक प्रयोग किया, परंतु पूर्ण रीति से यह प्रयोग असफल रहा। लेकिन इतना अवश्य हुआ कि मैंने इसका प्रयोग एक पूर्वाधारित सिद्धांत विरोधी दृष्टिकोण से किया है। यह दोष मुझ पर लगा। कहा जा सकता है कि यह संभव ही नहीं हो सकता कि वह जीव विज्ञान कला की तथ्य से एक व्यंग चित्र बनाया जा सके। अब जीवाश्म से संबंधित सामग्री इतनी पूर्ण है कि संभवतः नई कक्षाएं तैयार की जा सकती हैं, परंतु अंतर्वर्ती श्रृंखला का संबंधित सामग्री के अभाव के कारण वर्णन नहीं किया जा सकता और इसकी अपूर्णताएं वास्तविक हैं, वे कभी भी पूर्ण नहीं की जा सकती। क्रम विकास सिद्धांत का विचार पूरी तरह से विश्वास पर निर्भर है। मैं आपको बता दूं कि अब वह धर्म के राज्य में प्रवेश कर रहा है। मित्रों, अब इनके अनुसार एक क्रम विकासवादी बनने के लिए आपको विश्वास द्वारा इसे स्वीकार करना होगा। क्रम विकास एक अनुमान है और हमेशा से ही ऐसा रहा है, परंतु दुर्भाग्य से बहुतों ने इसे वास्तविकता के रूप में स्वीकार कर लिया है। हमारे दिनों में धर्म विज्ञानियों का एक समूह है जो बुद्धिमान रूढ़िवादी कहलाना पसंद नहीं करते। उन्होंने जिस सिद्धांत को अपनाया है उसे ईश्वरवादी क्रम विकास के नाम से जाना जाता है। यदि आप यह जानना चाहते हैं तो सुनिए कि एक वैज्ञानिक इसके बारे में क्या कहता है। किर्टले मैथर कहते हैं, जब एक धर्म विज्ञानी क्रम विकास को इस रीति में स्वीकार करता है कि रचयिता के द्वारा इस प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है, तो उसे इस प्रक्रिया के साथ अंत तक जाने के लिए तैयार रहना है। यह मात्र एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया है। यह मनुष्य के लिए सुनहरा युग होगा भविष्यत काल में, न कि भूतकाल में। इतना ही नहीं, परंतु रचनात्मक क्रम विकास प्रक्रिया को किसी अलौकिक हस्तक्षेप के द्वारा बाधित नहीं होना चाहिए। प्रथम जीवित कोषाणुओं का क्रम विकास, जो पहले निर्जीव रूप से अस्तित्व में था, अधिक मात्रा में तरक्की दर्शाता है। तरक्की के मार्ग पर एक सूक्ष्म कदम वनस्पति की, जो पूर्णतः स्वाभाविक विकास है। मित्रों, ऐसा लगता है कि ईश्वरत्व क्रम विकास सिद्धांत सब सिद्धांतों में सबसे अधिक अवास्तविक सिद्धांत है। यह लगभग एक अयोग्य मत और एक असंगत स्थिति है। आज वे लोग जो खरगोश और शिकारी कुत्ते के साथ दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वे अविश्वासियों के साथ चलना चाहते हैं, परंतु वे अपनी बगल में पवित्र बाइबल को भी रखना चाहते हैं। मेरे प्रिय मित्र, दोनों कार्य एक साथ करना बहुत कठिन है। यह तो ग्रीक रियत की एक घुड़दौड़ के जैसे है, जिसमें एक घुड़सवार का एक पैर एक घोड़े के पीठ पर और दूसरा पैर दूसरे घोड़े के पीठ पर रखकर सवारी करता है। यह अद्भुत तब होता है जब तक दोनों घोड़े एक साथ बराबर में दौड़ते हैं। परंतु मेरा विश्वास कीजिए कि जब एक घोड़ा विपरीत दिशा में जाने का निर्णय लेगा, तो घुड़सवार को निर्णय लेना होगा कि वह किस घोड़े पर सवारी करे। यही स्थिति ईश्वरीय क्रम विकासवादी की है। वह संयोग से गलत घोड़े की सवारी करते हुए घुड़दौड़ का अंत करता है। हमारे समय में बुद्धिमान मनुष्यों के मस्तिष्क में बहुत अधिक गलत सूचनाएं पहुंचा दी गई है, या गलत सूचनाएं हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि एक पत्रिका में बहुत पहले एक प्रश्न व उसका उत्तर छपा था। सबसे पहले प्रश्न, बाइबल लेख के अनुसार संसार की सृष्टि की तारीख या दिनांक क्या है? अब आप भी उत्तर सुनिए। 4004 BC, अर्थात यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने से पहले। जरा सोचिए कि कैसे एक व्यक्ति पूर्ण रूप से इतना बेतुका हो सकता है। कुछ वर्षों पूर्व जीवन नाम की पत्रिका में एक लेख छपा था, जो जीवन की सृष्टि के बारे में था, जिसमें कहा गया था कि अनिश्चित रूप से कुछ लोग कहते हैं कि 2 अरब साल पहले, और कुछ कहते हैं 1.5 अरब साल पहले, जीवन अद्भुत रीति से गहरे सतह में प्रकट हुआ। विज्ञान जगत इसे स्पष्ट नहीं कर सका कि इसने कौन सा रूप या आकृति धारण किया। इस पत्रिका के लेख के अनुसार इतना कहा जा सकता है कि कुछ शक्ति के माध्यम से कुछ विशाल अणु ने अपने को दुगुना करने की क्षमता प्राप्त की। मेरे मित्र, क्या आप इस सिद्धांत के साथ जाना चाहते हैं कि विशाल अणु अपने को दुगुना करने की क्षमता रखते हैं? अन्य हास्यास्पद सिद्धांत विकसित हुए हैं, जिसमें एक इस प्रकार से है कि मनुष्य का प्रारंभ इसी पृथ्वी पर कचड़े से है, जिसे कुछ पूर्व ऐतिहासिक विद्वानों ने इस पृथ्वी पर धुंधले में और दूरस्थ अर्थात भूतकाल में छोड़ दिया। वह वक्तव्य या कथन एक वैज्ञानिक से आया है। जब कुछ वैज्ञानिक हमें हमारे पूर्वजों को देखने के लिए पेड़ों में भेजते हैं, और कुछ वैज्ञानिक हमें समुद्र के सुनहरे पौधों में पूर्वजों को ढूंढने के लिए भेजते हैं, और अब कुछ वैज्ञानिक कचड़े के डब्बे में भेजते हैं, यह बेकार से भी बेकार होता जा रहा है ना? मैं आपके बारे में नहीं जानता, परंतु मैं महसूस करता हूं कि सृष्टि के बारे में परमेश्वर का कथन आज भी इस आधुनिक युग में स्थिर है। एक प्रचलित क्रम विकास की परिभाषा जो हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है, पदार्थ का एकीकरण और सहवर्ती गति का क्षय होना उस समय होता है जब पदार्थ एक अनिश्चित असंगत एक रूपता से निश्चित सुसंगत एक रूपता में जाता है, और उस समय बची हुई गति समानांतर परिवर्तित हो जाती है। मित्रों, इस पर थोड़े समय के लिए अवश्य विचार करें। आज भी इसको पढ़ना मेरे लिए अधिक मायने रखता है, जिसे हम उत्पत्ति 1:1 में पढ़ते हैं। लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। प्रश्न है कि ब्रह्मांड को किसने बनाया? उत्तर है कि परमेश्वर ने बनाया है। उसने ब्रह्मांड की रचना शून्य में से की। कब? यह मैं नहीं जानता, और न ही कोई इस दुनिया में जानता है। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी की रचना 1 अरब साल पहले हुई थी, और कुछ लोग कहते हैं 2 अरब साल पहले, और अब कुछ कहते हैं कि 5 अरब साल पहले हुई थी। इनके उत्तर देकर मुझे लगता है कि ये सब तुक्का मारने वालों में से हैं, और मैं सोचता हूं कि यह सृष्टि इससे भी कई अधिक साल पहले रची गई है। प्रिय मित्रों, हमें इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि परमेश्वर के पास अनंत काल है, जो उसके पीछे हैं। आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर यदि अनंत काल में से हैं तो सृष्टि के पहले अरबों वर्ष क्या कर रहे थे? मित्रों, क्या वे आपका और मेरा इंतजार कर रहे थे कि हम दृश्य में आएं? जी नहीं, वह व्यस्त थे इस सृष्टि की रचना करने के काम में। आप देखें कि वास्तव में उसने हमें इस विषय में कुछ भी अधिक नहीं बताया है। यह तो सिर्फ मनुष्य का अक्खड़पन या ढिठाई है जो इस पृथ्वी पर रहते हुए दावा करता है कि वह जानता है, जबकि वास्तव में वह उतना नहीं जानता जितना वह जानता है। इस विषय पर शेरमैन ए नागेल ने कहा, आप एक छोटे तारे को भी गति नहीं दे सकते हैं, आप जंगल के एक पत्ते को भी उसकी आकृति या रूप नहीं दे सकते हैं, न पहाड़ की ऊंचाई को ऊंचा कर सकते हैं और न समुद्र में डुबा सकते हैं। छोटा हठीला व्यक्ति बड़े अविश्वास के साथ आप राजसी गौरव को एक इंच नीचे नहीं ला सकते हैं और न दिन को छायादार और न गोधली कर सकते हैं, धुंधले चांद को चमकदार नहीं बना सकते हैं और न ही आप हिम्मत कर सकते हैं कि जिसने सब कुछ बनाया उस पर संदेह करें। मित्रों, यह हमारे लिए उचित होगा कि हम उस प्रतापी वक्तव्य या कथन को स्वीकार कर लें जो परमेश्वर के वचन में खोला गया है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जिसे हमने उत्पत्ति एक अध्याय के एक पद में पढ़ा। आइए हम भजनकार के साथ परमेश्वर की सृष्टि पर विचार करें। आकाश जो उसकी हस्तकला है और चांद तारों को उसने ही नियुक्त किया है, यह हम भजन संहिता 8 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं। और भजनकार यह भी स्मरण कराता है भजन संहिता 19 अध्याय उसके 1 पद में आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। प्रेरित पौलुस ने भी रोम की कलीसिया को लिखा, रोमियों की पत्री 1 अध्याय उसके 20 पद में, क्योंकि जगत की सृष्टि में से परमेश्वर के अदृश्य गुण, अनंत सामर्थ और परमेश्वरत्व उसकी रचना के द्वारा समझे जाकर स्पष्ट दिखाई देते हैं, इसलिए उनके पास कोई बहाना नहीं है। और इसी प्रकार से इब्रानियों की पत्री का लेखक इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 3 पद में कहता है, विश्वास ही से हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा समस्त सृष्टि की रचना ऐसी की गई कि जो कुछ देखने में आता है वह दिखाई देने वाली वस्तुओं से नहीं बनाया गया था। मित्रों, हमें विश्वास के द्वारा ही सृष्टि की रचना को स्वीकार करना है, क्योंकि विज्ञान भी हमें यह बताने में असमर्थ है कि बिना कुछ से कुछ कैसे बन गया। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से ऐसे ही उसे रचा, इसलिए आज मनुष्य यह नहीं बता सकता कि सृष्टि की रचना कब हुई। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक के वृत्तांत की अन्य पुस्तकों की लेख में तुलना करते हैं जो विरोधाभास है, तो वो ध्यान में लेने योग्य है। हमारे अधिकतर देशों में सृष्टि के बारे में दंत कथाएं हैं और अधिकतर उत्पत्ति के वृत्तांत का बिगड़ा हुआ रूप है या विकृत रूप है। उदाहरण के लिए सांसारिक देशों का उत्तम वृत्तांत बाबेल की सृष्टि लेख पट्टियों में हम पाते हैं। कृपया यहाँ पर कुछ विरोधों पर ध्यान दें। बाबुल देश का लेख अव्यवस्था के साथ आरंभ होता है, परंतु बाइबल का लेख सुव्यवस्था के साथ और पूर्णता के साथ प्रारंभ होता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बाबुल की वृतांत के अनुसार स्वर्गीय देह देवता के हैं, परंतु बाइबल के अनुसार वे संसार में मात्र एक वस्तु हैं और कुछ नहीं। बाबुल के वृतांत में बहुत से ईश्वरों को मानने का धर्म विज्ञान है, परंतु बाइबल में सिर्फ एक ही ईश्वर को मानने का लेख है। बाबुल की वृतांत कहता है कि ब्रह्मांड मात्र एक कारीगर का काम है, परंतु बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा और वैसा ही हो गया या अस्तित्व में आ गया। बाबुल के लेख का चित्रण बेतुका और बचकना या विरूपता के द्वारा किया गया है, जबकि बाइबल सृष्टिकर्ता के वैभवशाली और विधिवत वास्तविकताओं को प्रस्तुत करती है, परमेश्वर जो पवित्र है और जो एक उद्धार करता है। बाबुल की लेख निश्चित रूप से जाने माने विज्ञान के साथ भी कोई सामंजस्य नहीं रखती, परंतु बाइबल विज्ञान की सत्यता के साथ एक है। मैं क्रम विकास को अस्वीकार करता हूँ क्योंकि यह परमेश्वर का इनकार करती है और यह प्रकाशन का भी इनकार करता है। यह मनुष्य के पाप में गिरने और पाप की वास्तविकता का इनकार करता है और यह कुंवारी मरियम से यीशु मसीह के जन्म का भी विरोध करता है। इसलिए मैं इसका पूर्णतः इनकार करता हूँ। मैं यह विश्वास नहीं करता कि यह इस ब्रह्मांड के उद्गम का उत्तर है। मित्रों, ऐसे तीन मूलभूत क्षेत्र हैं जिसमें क्रम विकास नहीं चल सकता है और जिसका हल क्रम विकास नहीं कर सकता है। कुछ नहीं से कुछ के बीच जो खाली स्थान है उसे पुल बनाकर यह नहीं जोड़ सकता है, या कुछ नहीं से जीवन के बीच पुल नहीं बना सकता है, या मानवता और जीवन के बीच पुल नहीं बना सकता, और वह है संकोचशील मानव जीवन का एक स्वतंत्र इच्छा के साथ। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी गई है, परंतु मनुष्य संकोची है। मित्रों, भीड़ ऐसे भी हमेशा कुछ संवेदनशील बातों की तलाश में रहती है और कुछ रुचिदायक खोज के साथ आती है। क्रम विकास सिद्धांत के कुछ लोगों ने टेक्सास के ग्लेनरोस के निकट एक खोज की जहां डायनासोर रहते थे। अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि टेक्सास में एक सबसे बड़ी खोज करेंगे क्योंकि संभवतः डायनासोर वहां पर थे, परंतु उन्होंने एक ऐसे वस्तु को ढूंढ निकाला जो हमें विचलित कर देती है। उन्होंने उसी स्थान पर मानव के कुछ विशालकाय अवशेष प्राप्त किए। क्या आप जानते हैं कि यह वास्तव में एक निराशजनक बात है, क्योंकि यह बहुत कठिन है कि एक छोटे अमीबा के साथ शुरू हो या पानी के ऊपर का झाग हो और आप ये पाएं कि वे वापस चलते हुए डायनासोर मानव जाति थे जो आज के मानव जाति से कई गुना बड़े थे। मित्रों, मैं क्रम विकास सिद्धांत के बारे में भविष्यवाणी के रूप में कह सकता हूँ कि यह सिद्धांत कुछ वर्षों के अंदर अनेक समस्याओं का सामना करने वाले हैं और इस शताब्दी के अंत तक क्रम विकास सिद्धांत एक मूर्ख पक्षी के जैसे खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु तीसरा प्रश्न हमारे सामने उठ खड़ा होता है। लोग सिर्फ इतना ही नहीं पूछते कि किसने सृष्टि की रचना की है और कब उसने इसे रचा, परंतु लोग यह भी पूछते हैं कि उसने क्यों सृष्टि की। मेरा विश्वास कीजिए कि हम एक सही विषय पर आए हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ब्रह्मांड की सृष्टि परमेश्वर ने अपनी खुशी के लिए की। उसने देखा कि सृष्टि करना अच्छा है और वह इससे प्रसन्न हुआ। हम बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य उसका 4:11 में इन शब्दों को पाते हैं, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तूने ही सब वस्तुओं को रचा और उनका अस्तित्व और उनकी सृष्टि तेरी ही इच्छा से हुई। उसने ब्रह्मांड की सृष्टि की क्योंकि वह इसकी रचना करना चाहता था। उसने ऐसा अपनी खुशी के लिए किया। हो सकता है कि आप ब्रह्मांड को पसंद न करें, परंतु वह इसे पसंद करता है। उसने मुझे इसके बारे में कभी नहीं पूछा कि इस छोटे संसार को ब्रह्मांड की किस स्थान पर रखूं जिसमें आज हम रहते हैं। वास्तव में उसने मुझे यह भी नहीं पूछा कि मैं भारत देश में जन्म लूं या अन्य किसी देश में। जो भी हो, यदि मुझे ऐसे चुनाव करने का मौका मिलता तो मैं भारत को ही चुनता, परंतु उसने मुझे ऐसा कोई मौका नहीं दिया। क्या मैं आपसे फिर कहूं कि यह संसार या ब्रह्मांड को उसने अपनी खुशी के लिए ही रचा है? उसने देखा कि सृष्टि ठीक है तो वह अपने कार्य से आनंदित हुआ। इस ब्रह्मांड को रचने का दूसरा कारण था अपनी महिमा के लिए, अर्थात अपनी महिमा करना। मूल सृष्टि के गीत में परमेश्वर की महिमा का वर्णन मिलता है। अय्यूब की पुस्तक उसके 38:7 में लिखा है, जब भोर के तारों ने साथ मिलकर गाया तथा परमेश्वर के सब पुत्रों ने जय जयकार किया। यह उसकी महिमा के लिए रचा गया था। और यशाया नबी की पुस्तक में भी ये भविष्यवाणी के शब्द हैं, यशाया उसके 43:7 में, हर एक जो मेरे नाम का कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए रचा है तथा जिसको मैंने रचा और बनाया है। परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को अपनी महिमा के लिए बनाया है। परमेश्वर का वचन हमें यह भी बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को इस ब्रह्मांड में अपने संगति के लिए बनाया। वह मानव जाति के साथ संगति रखना चाहते थे और इसलिए उसने एक स्वतंत्र आचरण प्रतिनिधि को बनाया। परमेश्वर अपने लिए कई रोबोट बना सकता था या मशीन युक्त मानव बना सकता था जो एक बटन दबाते ही उसके सामने झुक जाते, लेकिन यह स्पष्ट है कि परमेश्वर इस प्रकार के मानव को नहीं चाहता था। वह चाहता था कि मनुष्य स्वतंत्र हो, वह अपने से उसका चुनाव करे, उससे प्रेम करे और उसकी सेवा करे। प्रिय मित्र, आज इस संसार में हमारे चारों ओर अंधविश्वास, ईश निंदा और परमेश्वर से बैर रखने वाले लोग रहते हैं। अब मनुष्य होने के नाते आप एक महान कार्य कर सकते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह को चुन लें और सामर्थ्य पिता परमेश्वर पर विश्वास करें जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता है। उसके पुत्र यीशु मसीह को स्वीकार करें। यही आपकी और मेरे लिए एक महिमापूर्ण मौका होगा। हम स्वतंत्रता के बारे में बहुत बातें सुनते और जानते हैं, यहां तक कि हमने कई भाषण भी सुने हैं, लेकिन आज भी जो लोग हमारे आसपास या चारों ओर रहते हैं वास्तविक स्वतंत्रता क्या है नहीं जानते। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता होने के लिए चुनते हैं तो यही हमारी वास्तविक स्वतंत्रता है। अब आइए हम पुनः उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय के पहले पद को देखें। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह एक प्रतापी पद है, यह एक आश्चर्यजनक पद है। मेरा मानना है कि यह पद एक दरवाजे के समान है जिसमें से होकर आप बाइबल में प्रवेश कर सकते हैं। आपको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर ही रचयिता है, इसलिए कि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे यह विश्वास करना होगा कि वह सृष्टिकर्ता है। अर्थात आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में, यह एक आरंभ या शुरुआत है जिसकी आप या मैं कोई तारीख नहीं दे सकते हैं। बस हम अनुमान लगाकर कह सकते हैं कि अरबों साल पहले सृष्टि हुई। हो सकता है कि आपका अनुमान सही हो, परंतु कौन जानता है कि कितने वर्ष पूर्व सृष्टि हुई थी। निश्चय ही मनुष्य इसके बारे में नहीं जानता है। परमेश्वर ने रचा, यहां पर यह शब्द रचा इब्रानी भाषा के 12 शब्द से आया है जिसका अर्थ है कुछ नहीं से कुछ रचना। यह शब्द उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय में सिर्फ 3 बार प्रयोग में आया है, क्योंकि यह सृष्टि के 3 रचनाओं का ही वर्णन करता है। उसमें से पहला है 21 पद में हम पाते हैं इसे, कुछ नहीं से कुछ की सृष्टि करना। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और दूसरा है जीवन की सृष्टि, और परमेश्वर ने विशालकाय समुद्री जल जंतुओं तथा प्रत्येक जीवित और तैरने फिरने वाले जंतु की सृष्टि की। और अब तीसरा जो हमें 27 पद में मिलता है, मनुष्य की सृष्टि। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा। इसलिए ईश्वरवाद क्रम विकास सृष्टि का उत्तर नहीं है या सृष्टि का अनुसरण करती है जब तक कि मनुष्य की सृष्टि का समय ना आ जाए। तब वे यह कहते हैं कि आदम और हवा क्रम विकास प्रक्रिया के परिणाम है। मित्रों, ईश्वरवादी क्रम विकासी उत्पत्ति की पुस्तक के दिन को एक निर्धारित समय मानते हैं, अर्थात एक लंबा समय। मैं विश्वास नहीं करता कि यह वही सत्य है, परंतु परमेश्वर रचनात्मक दिनों को शब्दों के साथ चिन्हित करते हैं। तब संध्या हुई, फिर सवेरा हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। यहां पर ध्यान दीजिए कि वह एक लंबे समय या अवधि की बातें नहीं कर रहे हैं, परंतु एक दिन के सही 24 घंटे को कह रहे हैं। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जरा सोचें, पृथ्वी को अन्य सृष्टि से अलग क्यों किया गया? यह इसलिए हुआ क्योंकि पृथ्वी मानव जाति का निवास स्थान है, और इस कारण से पृथ्वी को अन्य सृष्टियों से अलग करना पड़ा। और आज हम सब इसमें बहुत अधिक रुचि लेते हैं क्योंकि हम भी इसकी रचना है। मित्रों, मुझे और आपको याद रखना चाहिए कि हम एक सृष्टि हैं, परमेश्वर की सृष्टि, और परमेश्वर की सृष्टि होने के नाते हम उसके कर्जदार हैं। कई साल पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने इस प्रकार कहा, सबसे साधारण आकृतियां जिनके अंदर नहीं जानने लायक प्रकटीकरण है, जो दोबारा विभाज्य है, वे हैं समय, आकाश, वस्तु, शक्ति और गति। वे बटने वाली श्रेणी में आते हैं। एक अच्छे निजी कार्यकर्ता जॉर्ज डुई ब्लोमग्रेन एक सेनाध्यक्ष से बात कर रहे थे जिन्होंने कानून में स्नातक किया था। श्री ब्लोमग्रेन उसे गवाही देने की कोशिश कर रहे थे। सेनाध्यक्ष ने हर्बर्ट स्पेंसर का नाम लिया तो श्री ब्लोमग्रेन ने जवाब में कहा, क्या आप जानते हैं कि बाइबल और स्पेंसर दोनों ही सृष्टि के महान नियम की शिक्षा को देते हैं। सेनाध्यक्ष ने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा, यह कैसे है? और उसका उत्तर था, स्पेंसर ने समय, आकाश, वस्तु, शक्ति और गति के बारे में बातें की है। उत्पत्ति की पुस्तक के पहले दो पदों में हम पाते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में जहां पर समय का बोध है, और परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी जो वस्तु का बोध करता है। पृथ्वी बेडोल और वीरान थी, और अतः जल की सतह पर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल की सतह पर मंडराता था। आत्मा जो परमेश्वर की शक्ति को दर्शाता है। इसी नियम को ढूंढ निकालने में स्पेंसर को 50 वर्ष लग गए, परंतु यहां पर यह केवल 50 सेकेंड में हो गया। सेनाध्यक्ष के पास अब दूसरा आधार नहीं रहा जिस पर वे वाद विवाद करते, सिवाय इसके कि उसने यीशु को अपना उद्धार करता स्वीकार कर लिया। मित्रों, यह वास्तव में बहुत ही रुचिदायक बात है कि परमेश्वर ने इन महान नियमों को उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय के पहले दो पदों में रखा है। इसे देखना हमारे लिए और आपके लिए अति महत्वपूर्ण बात है। मित्रों, हमारा समय यहाँ पर आज समाप्त होता है, इसलिए हम आज के अध्ययन कार्यक्रम को यहीं पर रोक देते हैं, और अगले कार्यक्रम में हम इससे आगे के पदों पर विचार करेंगे। तब तक आप इस अध्ययन पर अवश्य विचार करें। प्रभु आप सबको अपनी आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।